ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की 23 बहुविकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे और उत्तर प्रदेश के सरसावा हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए भवन के निर्माण और रनवे के विस्तार से संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के आगरा हवाई अड्डे, बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे तथा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव की भी आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी खेल परिसर के दूसरे और तीसरे चरण के पुनर्विकास कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक सार्वजनिक पेवेलियन और लड़के लड़कियों के लिए 100 बिस्तरों वाले हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सारनाथ में बौद्ध क्षेत्रों के पर्यटन विकास कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बानासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर के पर्यटन विकास तथा पार्कों के सौंदर्यकरण और पुनर्विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु श्री शंकरा विजेंद्र सरस्वती की उपस्थिति में किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में और 75,000 मेडिकल सीट जोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राज्य मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से और सुधीर मुनगंटीवार बल्लापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विद्यालय के बाहर हुए विस्फोट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। विस्फोट की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची, जहां उसे विद्यालय की दीवार के पास की एक दुकान का शीशा और एक कार क्षतिग्रस्त मिली। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों ने घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे इस घटना पर लगातार नजर रख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और दक्षिणी भित्री कर्नाटक में तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी कल तेज वर्षा की संभावना है। भीषण चक्रवाती दाना के बृहस्पतिवार की सुबह तक ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। उत्तरी गजा के बेत लाहिया शहर में इजरायली हमलों में कम 87 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बचाव अभियान जारी है। इस बीच लेबनान में इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया। भारत की ओर से दिलराज सिंह, शारदानंद तिवारी ने 2-2 और मोहम्मद कोनेन और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किया। कल अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। भारत का अगला मैच मेजबान मलेशिया से 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।